मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 9 मई 2015 है, सैटरडे है और आज के इस सैटरडे ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब हम जो सैटरडे को जिस सैटरडे को भी इस तरह के ऑडियो गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसे अब हम नाम देंगे सैटरडे ऑडियो गाइडेंस, क्योंकि स्पेशल ऑडियो गाइडेंस जो स्टूडेंट्स के लिए जाता है एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे हम नाम अब देंगे सैटरडे ऑडियो गाइडेंस। और इस आज के सैटरडे ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप सब मैं मानकर चलता हूं कि अब सिविल सर्विस की अगस्त की लास्ट वीक में जो प्री के एग्जाम होने हैं उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग नहीं भी बैठ रहे हों, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं इस बात पर डिस्कस करूंगा कि अब लगभग 3.5 महीने आपके एग्जाम के बच गए हैं, इन 3.5 महीने का कैसे आपको सबको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। मित्रों, तो देखिए, जब हम कोई भी बड़ा काम करते हैं तो उसके लिए एक प्लान करना पड़ता है, या कह लीजिए उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ती है। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी को हम रणनीति का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एक तरह की लड़ाई ही है, एक तरह का युद्ध ही है। तो ऐसी स्थिति में शुरू में तो हम भले ही थोड़े सी अव्यवस्था के तौर पर चलते रहते हैं, कभी पढ़ाई हो गई कभी नहीं हुई, हम समय के उतने वैल्यू को नहीं समझ पाते, लिबर्टी ले लेते हैं, और यदि लिबर्टी ले भी लेते हैं तो बाद में उसको उसकी भरपाई करने की स्थिति भी रहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे हम एग्जाम के नजदीक आते जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर वो भरपाई करने की जो गुंजाइश है वो लगभग लगभग खत्म हो जाती है। यदि हम उस समय अपने वक्त को खराब करेंगे तो निश्चित रूप से फिर ये वक्त हमारे पेपर को कहीं न कहीं खराब जरूर करेगा। तो मैं समझता हूं मित्रों कि चूंकि अब 3.5 महीने बचे हैं और सिविल सर्विस का एग्जाम है, इसे हम बहुत ही हल्के फुल्के तौर पर तो नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए, इसलिए कम से कम अब तो हरेक स्टूडेंट को इसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते चले जाए उनकी अलर्टनेस बढ़ती चली जानी चाहिए। अलर्टनेस कहने का मेरा मतलब तनाव से नहीं है, दबाव से नहीं है, सतर्कता से है, मतलब कमिटमेंट से है, समर्पण से है, कि फिर हम दूसरी चीजों में कटौती करके अपने समय को एक शंकु के आकार में आगे बढ़ाते चले। शंकु के आकार का मतलब है मित्रों फोकस्ड होते चले। तो मित्रों, अब 3.5 महीने ऑलमोस्ट बचे हैं और उन 3.5 महीने का कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपसे अपने जो अनुभव हैं, कह लीजिए अपनी जो प्लानिंग है, मेरी जो सोच है, वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन एक बात स्पष्ट कर लूं कि आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि जो मैं कह रहा हूं यही बिल्कुल होना चाहिए, नॉट एट ऑल। मैं जानता हूं मित्रों आप सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं और आप लोगों की तैयारी के जो पैटर्न है और जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग है। आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो इससे पहले बैठ चुके हों, तैयारी उनकी बहुत अच्छी हो चुकी हो, बहुत से ऐसे होंगे जो मेंस तक पहुंचे हों, बहुत ऐसे होंगे जो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हों, बहुत होंगे जो बिल्कुल अभी नई तैयारी कर रहे हैं, बहुत हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, प्री में बैठे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन तैयारी उनकी बेहतर है। तो आप सब बिल्कुल अलग अलग स्थितियों में हैं, इसीलिए मैं तो एक आपको केवल रोड मैप प्रोवाइड कर रहा हूं। ये रोड मैप एक कॉमन रोड मैप है, इसमें आप अपने आप को कितना फिट कर पाएंगे, कौन कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी हो सकती हैं, ये आपको फैसला करना है। और यहां तक कि मैं तो केवल एक पैटर्न प्रोवाइड कर रहा हूं कि इस तरीके से होना चाहिए। इस पैटर्न को आप अपने ऊपर अलग अलग तरीके से लागू करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। मित्रों, मुझे ये लगता है कि अब ऐसे समय में जबकि 3.5 महीने एग्जाम के बचे हैं, आप सब चाहे जितने भी दूसरी चीजों में व्यस्त हों, लेकिन अब एक समय आ गया है जब आप में से हरेक को इसके लिए सिविल सर्विस की तैयारी के लिए एटलीस्ट 4 घंटे तो देने ही चाहिए। हालांकि शुरू में भी मैं चार घंटे की बात करता हूं, लेकिन ये चार घंटे बाद में फिर थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अब 3.5 महीने बचे हैं तो उन्हें चार घंटे मुझे लगता है कि देने चाहिए, डिवोट करने चाहिए। और ये उनके लिए है जिनकी तैयारी पहली बार हो रही है, जो पहले तैयारी कर चुके हैं वो डेफिनेटली इसमें अपने ढंग से घटत बढ़त कर सकते हैं। अब ये जो चार घंटे होंगे, आप देखिए कि अब इन चार घंटों को आप डिवाइड कैसे करेंगे, इन चार घंटों को आप कहां कहां लगाएंगे। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक घंटा है आपको, इसको आप चार भागों में बांट सकते हैं। एक एक घंटे के चार टुकड़े बना लीजिए, चार फोर सीटिंग कर लीजिए, या टू सीटिंग में टू आवर्स की दो सीटिंग कर लीजिए, जैसा भी आपको सुविधा हो, क्योंकि समय के टुकड़े सबके लिए एक जैसे अवेलेबल नहीं होते। तो एक घंटा आपको प्रैक्टिस में देना चाहिए। जब मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आपके जनरल स्टडीज का पेपर है और जो आपके सी सेट का पेपर है, इसे सॉल्व करें। अनसॉल्व क्वेश्चंस ले लें, या सॉल्व क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उनको ले लें और एक घंटा उसको सॉल्व करने में लगाएं। यदि आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, आधे घंटे सी सेट के लिए और आधे घंटे जनरल स्टडीज के लिए। मैं जानता हूं कि आपको आधा घंटा जनरल स्टडीज और आधा घंटा सी सेट के लिए कम लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया है जब आप इसमें बहुत ज्यादा समय डिवोट करें। आधे आधे घंटे का वक्त भी इसके लिए सफिशियंट होना चाहिए, बशर्ते कि आप क्वालिटी टाइम दे सकें। अब इस पर मत जाइए कि आपको 100 क्वेश्चन डेली ही सॉल्व करने हैं, 20 क्वेश्चन डेली ही सॉल्व करने हैं। आपको सॉल्व करना है और एक समझदारी के साथ करना है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करना है। इसलिए आप समय की लंबाई पर ज्यादा मत जाएं, ये मेरी सलाह है दोस्तों। आप समय के डेप्थ पर जाएं, उसकी क्वालिटी पर जाएं, कि अगर आपने 5 भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वो उन उसके सोल्यूशन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते थे तो अब जानने लगे। खासकर सी सेट में तो ऐसा आपको बहुत मिलेगा। अगर आप एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपसे 10 मिनट की मांग करे, तो आप उसे 10 मिनट दीजिए। हड़बड़ाइए मत कि परीक्षा में तो मुझे 10 मिनट मिलेंगे नहीं, तो यहां मैं क्यों 10 मिनट दूं, मुझे तो किसी भी हालत में इसको 1.5 मिनट में सॉल्व करना है, 2 मिनट में सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि यह रणनीति ठीक नहीं होगी। आप उसे सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि आपने उसे कैसे सॉल्व किया है, उसके तरीके को समझिए, उसके फार्मूले को पकड़िए, और फार्मूले को पकड़ने के बाद फिर दिन में मन ही मन उसे 2-3 बार दोहराइए, ताकि यदि इसी पैटर्न का क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछ लिया जाता है तो वहां आप उसे फटाक से सॉल्व कर सके, वहां आपको फिर वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए ये जो मैं एक घंटे प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, ये आपके आत्मसंतोष के लिए नहीं है कि आप अपना मूल्यांकन करें। मेरा मेन पर्पज है कि इससे आपकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, और नो डाउट मित्रों, इससे स्पीड तो बढ़ती ही है। अब मैं आता हूं दूसरा जो घंटा होगा आपका, जो एक घंटे का होगा, इसमें आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, इसमें एक घंटे आपको अपने ऑप्शनल की तैयारी करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि सर ये क्या है, बात कर रहे हैं आप प्री की तैयारी की और यहां सोच कह रहे हैं कि 25% टाइम, मतलब चार घंटे में, अगर एक घंटे में ऑप्शनल की बात कर रहा हूं तो आपसे 25% मांग रहा हूं ऑप्शनल के लिए। मैं इसके बारे में निश्चित रूप से बहुत श्योर हूं मित्रों कि आपको ऑप्शनल की तैयारी बंद नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स के बारे में मैंने देखा है कि जब वो सिविल सर्विस प्री की तैयारी करते हैं उस दौरान ऑप्शनल की तैयारी बंद कर देते हैं परीक्षा के आसपास पहुंचने के बाद। यहां तक कि बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि उनकी सोच होती है कि यार प्री क्वालिफाई हो जाए तब हम ऑप्शनल की तैयारी कर लेंगे। नो डाउट फ्रेंड कि अब पहले 2 ऑप्शनल होते थे, अब 1 ऑप्शनल है, तो आपके पास जो वक्त है उसमें केवल एक ही विषय पढ़ना है। लेकिन आपने ऑप्शनल को लेकर के जो चुनौती है उसके आप क्वेश्चन पेपर देखिए, तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इसे इतनी आसानी से 2-4-6 महीने में तैयार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मित्रों, तो फिर 2-4-6 महीने में तैयार नहीं किया जा सकता तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि हम पहले से बहुत अच्छी तैयारी करके रख लेते हैं फिर अभी छोड़ देंगे 2-3 महीने के लिए। मित्रों, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है वो ये कि सिविल सर्विस की तैयारी में कंटिन्यूएशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अगर आप इसे बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर जब आप शुरू करेंगे प्री एग्जाम के बाद में, तो तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी धूल जम गई है, मेमोरी पर थोड़ी सी धूल जम गई है, थोड़ी सी समझ थोड़ी सी कम हो गई है, यहां तक कि जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा कम होने लगा है, थोड़ा सा चूकने लगा है, कमजोर पड़ने लगा है, डेप्थ भी थोड़ी सी कम होने लगी है। तो ये सारी चीजें आप महसूस करेंगे अगर माइंड बहुत ही माइन्यूटली अपने को ऑब्जर्व करेंगे तो। और आपको मालूम है मित्रों की जो सही परीक्षा है वो मेंस की परीक्षा है। ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं और चूंकि अभी भी कह रहा हूं इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि एक घंटे आप ऑप्शनल के लिए निकालिए, मतलब इसको छोड़िए बिल्कुल भी मत। तो ये घंटे आपके ऑप्शनल के लिए हो जाएगा, दो घंटे की प्लानिंग हो गई। और जो एक घंटे का वक्त है, जो तीसरा एक घंटा है, वो बट नेचुरल है कि आपके न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, अगर आप ऑडियो सुन रहे हैं तो ऑडियो के लिए ये एक वक्त आप निकाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी और जरा एक एडिशन करना चाहूंगा मित्र। तो जैसे ऑडियो सुनने की मैंने बात कही, तो ऑडियो हो सकता है कि आप बस में बैठे हुए हो, सफर कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम अगर आप सर्विस में होंगे तो कार से जा रहे होंगे, बस से जा रहे होंगे, जिससे भी जा रहे होंगे, ट्रेन से जा रहे होंगे, तो उस समय आप ऑडियो सुन सकते हैं, तो अपने उस आधे घंटे को बचा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट ऑडियो सुन लेते हैं एक बार, उनके लिए फिर एक घंटा अखबार प्लस ऑडियो सफिशियंट होता है। क्योंकि मित्रों मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑडियो में आपको पूरे के पूरे, जैसे कि होता है ना कि सब एक दर्जन संतरे का रस निकाल करके आपको एक बड़े गिलास में दे दिया गया कि पियो, और आपको उतने ही टॉनिक मिल गए, जो भी विटामिन प्रोटीन टॉनिक चाहिए थी आपको मिल गए, तो आपको वो चक्कर से आप बच गए कि आप संतरे को छीलो और फिर उसको मिक्सी में डालो और फिर रस निकालो फिर छानो, वो पूरा का पूरा वक्त आपका बच गया। तो इस तरह की कोशिश मेरी ऑडियो में होती है। और मैं समझता हूं कि अगर आप ऑडियो भी सुन रहे हो तो फिर अखबार मैगजीन्स इसके साथ एक घंटे का समय सफिशियंट होता है। अब मित्रों जो लास्ट एक घंटा जो बचा है, अंतिम वन आवर जो बचा है, उसमें आपको दो चीजें करनी चाहिए। पहला तो ये है, अब ये तो मैं दो चीजें बता रहा हूं कि यदि आपकी पहले से तैयारी है तो दो काम करने चाहिए। पहला तो है कि आप आधे घंटे तक बेसिक को दोहराइए, अगर आपकी पहले से तैयारी है तो, क्योंकि अगर आपने तैयारी पहले कर रखी है तो फिर बेसिक्स के बारे में आपको ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। आप आधे घंटे बेसिक्स को दोहराने में लगा दें, और जो प्रैक्टिस के लिए मैंने जो आपको एक घंटे का वक्त बताया है शुरू में, उसे आप डेढ़ घंटे कर दें। लेकिन यदि आपकी तैयारी उस तरीके की नहीं है और आप पहली बार ही तैयारी करके बैठ रहे हैं, तब फिर आपको चाहिए कि आप एक घंटे फिर बेसिक्स को दोहराने में लगाएं। दोस्तों सही तैयारी आपकी तब होती है जब आप परीक्षा के आखिरी में जो डेढ़ दो महीने का वक्त बचता है उस समय आप सिर्फ दोहराते हैं, सिर्फ रिवीजन करते हैं, वो रियल तैयारी होती है। हालांकि मैं उस पैटर्न पर साढ़े तीन महीने के वक्त को लेकर के चल रहा हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अभी उसके लिए डेढ़ दो महीने की लिबर्टी है कि यदि आपकी तैयारी नहीं हुई है बेसिक्स की तो आपको बेसिक्स की बहुत अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। इसमें से आप थोड़ा और अधिक समय निकाल सकते हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि यदि सच में आप पहली बार ही तैयारी करके परीक्षा में बैठ रहे हैं तो फिर आप चार घंटे को थोड़ा सा यदि संभव हो तो बढ़ा सकते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा मित्रों कि मैं ये चार घंटे कह रहा हूं तो आप इसको वीकली 28 आवर्स मान सकते हैं। अगर आप सर्विस में हैं या कॉलेज जा रहे हैं या कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं तो जो छुट्टी के दिन होते हैं उस दिन आप थोड़े से आवर्स बढ़ा करके बाकी जो कमी होगी उसे भी पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों ये मैंने आपको चार घंटे का डिवीजन बताया है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैं बार बार बेसिक्स की बात क्यों कर रहा हूं कि आपको बेसिक्स में एक घंटे लगाना चाहिए, अगर आपकी तैयारी नई है तो उसे डेढ़ घंटे देने चाहिए, और यदि है तो भी उसे दोहराना चाहिए भले आप आधे घंटे के लिए दोहराएं। उसका कारण यह है फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि मैं अनसॉल्व्ड पेपर को एक तरह से अपना गुरु ही मानता हूं। आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखिए, खासकर पिछले तीन चार साल का, जब से ये सी सेट का पैटर्न आया है तब से 2011 से शायद आया है, आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि ये करंट अफेयर्स के नहीं है, बेसिक्स के हैं, लेकिन वो बेसिकली करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि यदि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब जो क्वेश्चन का जो स्वरूप है, जो पैटर्न है, वो क्या हो गया है, बेसिक्स प्लस करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स के अलग से क्वेश्चन ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि अगर मैं 2014 के आंकड़े आपको बताऊं और अगर आप उसमें से एग्जैक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ढूंढें जनरल स्टडीज में, तो आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। सोच करके देखिए, ओनली 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, ओनली 6 क्वेश्चन, केवल 6 क्वेश्चन है, 6%। तो क्या करंट अफेयर्स नहीं पूछा जा रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है? ये निष्कर्ष मत निकालिए, गए निष्कर्ष बहुत खतरनाक होगा। हो क्या रहा है कि वो करंट अफेयर्स से उठा करके और फिर बेसिक्स पर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी अभी आपने एक चीज, एक खबर पढ़ी होगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, जो शायद बहुत ज्यादा चर्चा में भी नहीं आई है, कि कुछ दिनों पहले, हार्डली 10 दिन हुए होंगे, कि राज्यसभा ने एक विधेयक पारित किया है जो किन्नरों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित विधेयक है। और ये जो विधेयक है ये निजी विधेयक है, मतलब सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक नहीं है, इसको हम कहते हैं निजी विधेयक। और ये 36 साल बाद हुआ, आफ्टर 36 ईयर्स हुआ है कि कोई निजी विधेयक पारित हुआ हो। अदरवाइज आप देखते हैं कि हर विधेयक सरकार प्रस्तुत करती है ज्यादातर, और अगर निजी विधेयक कोई पारित प्रस्तुत करेगा तो उसके पारित होने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि उसके सदस्य कितने हैं उसके पक्ष में मतदान करने वाले। अब आप देखिए कि ये निजी विधेयक हुआ, अब आपसे निजी विधेयक के इस करंट को लेकर के क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा जाए, कि जो निजी विधेयक पारित किया गया उसके बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है, ये 36 साल बाद पारित हुआ, यह राज्यसभा में पारित हुआ, या किन्नरों के अधिकारों से संबंधित, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तब आप समझ लेंगे कि नहीं, ये तो सीधे सीधे करंट अफेयर्स का है, ये एक पैटर्न हुआ। लेकिन अब सिविल सर्विस क्या कर रहा है, ऐसे नहीं पूछेगा, वो निजी विधेयक पर पूछेगा कि संविधान ने निजी विधेयक प्रस्तुत करने का जो प्रावधान किया है उसके संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब फिर वो निजी विधेयक पर पूछेगा कि निजी विधेयक कोई भी व्यक्ति बिना सभापति की के भी प्रस्तुत कर सकता है, इस तरीके से वो क्वेश्चन करेगा। तो अब देखिए कि ये हो गया बेसिक्स का। अगर ये प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया, ये पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये बेसिक से पूछ रहा है। लेकिन क्यों पूछ रहा है, क्योंकि करंट में इससे रिलेटेड कोई ना कोई घटना थी। तो मित्रों, एक बड़ी मजेदार चीज मुझे अभी के जनरल स्टडीज में लगती है प्री के, कि यदि कोई करंट के बारे में बहुत सतर्क है, बहुत अच्छे से पकड़ बना करके रख चल रहा है, तो फिर वो बहुत से बेसिक्स क्लियर कर सकता है, या कम से कम उन बेसिक्स को छांट सकता है कि मुझे किन किन बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए मित्रों, शुरू में भी ऑडियो गाइडेंस अगर आप सुन रहे होंगे तो मैं लगातार बेसिक्स 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 की बात करता रहा हूं। हो सकता है कि मेरी बेसिक्स को सुनते सुनते आप लोग पक भी गए हो कि यार छोड़िए सर, अब क्या बेसिक्स, समझ गए हैं, अब आप आगे बढ़िए। लेकिन मैं क्या करूं, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा बना दिया है। दोस्तों, फिर मैंने जो आपको बेसिक्स के बारे में जनरल स्टडीज के लिए 1 घंटा देने को कहा है, उसका जो दूसरा पर्पज है वो ये भी है कि मेंस के तीनों पेपर की तैयारी आपके इसी पैटर्न पर होगी, इसी बेसिक्स के आधार पर हो जाएगी। करंट अफेयर्स से आप जुड़े हुए हैं, रोज अखबार पढ़ रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। और आप देखिए कि ऑडियो में हम जनरली कोशिश यही रहती है कि उसकी एनालिटिकल पावर आपकी डेवलप हो सके। तो अगर आप उस बेसिक्स को लेकर के चलते हैं तो आपके मेंस के 3 पेपर की यहां तैयारी हो गई जनरल स्टडीज की, और ऑप्शनल के लिए आप ऑलरेडी 1 घंटा दे करके चल रहे हैं। तो इस तरह से आप मेंस को भी बराबर साधते चले जा रहे हैं, जो आपके लिए जरूरी है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा लिबर्टी देना चाहिए। और मित्रों, जो मैंने बेसिक्स की बात कही है, जो करंट की बात कही है, इसके बारे में मैं अब आपको आता हूं एक दूसरे इश्यू पर, और वो इश्यू है कि जो हमारे डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्ट है, कि प्री में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये मैं अब आपको थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा, इस ताकि आप किस किस सब्जेक्ट के बेसिक्स पर ज्यादा जोर दें आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। मित्रों, जो जनरल स्टडीज है उसके चार सबसे बड़े पिलर्स हैं। अगर ये मैं चार सबसे बड़े पिलर्स कह रहा हूं तो ये केवल मैं आपके सिविल सर्विस की जनरल स्टडीज के बेस पे कह रहा हूं। इसमें एक है मित्रों भूगोल, दूसरा है राजनीति विज्ञान, तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा है इतिहास एवं संस्कृति। नो डाउट कि साइंस का रोल अब बढ़ गया है, साइंस पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस चार सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है, बट मैं चल रहे कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी जिसमें हेल्थ साइंस पर ज्यादा पूछते हैं, और बॉटनी में फिर वो एनवायरमेंट और इन सब चीजों पर ज्यादा आ जाते हैं, तो ये साइंस पर आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बताऊंगा मित्रों कि देखिए 2014 के हम आंकड़े लेते हैं कि अगर हम ये शुरू के चार सब्जेक्ट लें जो मैंने आपको पिलर्स की बात कही थी जिसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है या कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी कह लीजिए, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री एंड कल्चर है, तो किसी भी साल अगर हम इन चारों के क्वेश्चन मिला दें तो 60% से कम नहीं पूछे गए हैं। यानी कि अगर आप इनकी तैयारी, इनके बेसिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और इनके करेंट से जुड़े रहते हैं तो 60% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यह बात अलग है कि आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो मैक्सिमम पोर्शन हो आप इन चारों से सॉल्व कर लें। क्योंकि दोस्तों जहां तक साइंस का सवाल है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, खासकर उनके लिए जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं है। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको यहां बिल्कुल माइलेज मिलता है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं उनको दिक्कत इस मायने में होती है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस लेवल के वो सामान्य से थोड़े से अधिक लगते हैं, या हो सकता है कि अब स्टूडेंट्स को वो सामान्य ही लगे आज के स्टूडेंट्स को, लेकिन मुझे सामान्य से थोड़े से वो ऊपर के लगते हैं। और जो मैंने कई स्टूडेंट से बात की तो उनका भी लगभग यही कहना था। लेकिन एक बात जरूर है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन तो सामान्य से थोड़े से ऊंचे स्तर के लगते हैं, और मुझे लगता है कि उसकी तैयारी में थोड़ी सी काफी जद्दोजहद होगी, इसके बाद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हेल्थ साइंस और जो बॉटनी, जो जिसका ज्यादा संबंध एनवायरमेंट से है, वो सामान्य स्तर के हैं। तो ऐसे में मैं सलाह ये दूंगा कि आपको जो हेल्थ साइंस है और जो एनवायरमेंट है, जो बॉटनी है, साइंस के पोर्शन में इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स को आप थोड़ा सा मार्जिन देकर चल सकते हैं, उसे थोड़ा सा छोड़ करके चल सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उसके बारे में केवल आप देख ले। क्योंकि साइंस से देखिए मित्रों, अगर मैं आपको दो तीन चार साल के आंकड़े बताऊं तो 2014 में 33 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी बड़ी संख्या है, ये चारों सब्जेक्ट को मिलाकर के है। 2013 में 28 क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में 18 पूछे गए और 2011 में 22 पूछे गए। तो यानी कि 25% क्वेश्चन हम मान करके चले कि साइंस से पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स का मैंने बताया कि अगर आप ढूंढेंगे तो आपको 10% के आसपास करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको बेसिक से जोड़ करके देखेंगे तो इसका परसेंट बहुत हाई हो जाएगा। और फिर जो सब्जेक्ट 60% मैंने बताया उधर फोर पिलर्स के, उसमें रिड्यूस हो जाएंगे। क्योंकि आपको तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, लेकिन पता लगा कि वो करंट अफेयर्स का भी है। जैसे जीएसटी पर अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो आप क्या करेंगे, अब इसको किस में डालेंगे, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और नो डाउट कि जो भूगोल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपके हिस्ट्री कल्चर से पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से खासकर, उसमें सबसे ज्यादा हिस्ट्री में जो रोल होता है वो फ्रीडम मूवमेंट का होता है, फ्रीडम मूवमेंट पर आपको ज्यादा जोर देना चाहिए। और थोड़ा बहुत जो पोर्शन होता है वो होता है एंशियंट इंडिया पर, मेडिवल इंडिया, और फिर इधर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अगर एक दो तीन पूछे भी जा रहे हैं तो अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं तो आपको फायदा मिल सकता है, अगर ऑप्शनल में आपकी हिस्ट्री है तो आपको फायदा मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो मेरी सलाह है कि फिर आप उसके ज्यादा जद्दोजहद में मत पड़िए मित्रों। क्योंकि देखिए आप मान करके चलिए कि आपको एनी हाउ किसी भी हालत में माइनस मार्किंग के बाद भी 60+ मार्क्स स्कोर करना है, या 62% आपको लाना ही लाना है, ये आप अपना लक्ष्य बना करके चलिए। तो आपके पास, चलिए हम इसको 65 कर देते हैं, तो हमारे पास 35% छोड़ने की गुंजाइश है। तो हर स्टूडेंट को अपने अपने तरीके से सोचना पड़ेगा कि इनमें से वो क्या छोड़े और क्या अपने पास रखे। तो मित्रों ये मैंने आपको डिविजन्स के बारे में बताया कि किस तरह से क्वेश्चंस के डिविजन्स होते हैं। अब मैं थोड़ी सी दो तीन चीजें और आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला तो ये कि मैंने प्रैक्टिस की बात कही कि आप एक घंटे प्रैक्टिस को दीजिए। वो प्रैक्टिस की बात मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है कि इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपकी आदत पड़ेगी, क्योंकि वहां समय और स्पीड बहुत मायने रखता है। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके पास 120 मिनट का समय है, एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट है, क्वेश्चंस के पैटर्न भी ऐसे हैं जिनको समझने में टाइम लगता है, सीधे सीधे नहीं होते हैं, उनमें जटिलता होती है, तो उस जटिलता को आपका दिमाग उसके साथ अपना तालमेल बैठा सके, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उस प्रैक्टिस में आए। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो आप देखेंगे कि वहां फिर आपको आ भी रहा है और आप सॉल्व कर भी लेंगे, लेकिन क्वेश्चन छूट जाएंगे। और अगर क्वेश्चन छूट जाएंगे मित्रों, तो अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या होगी। अगर हमें नहीं आ रहा है, छूट जाए, तब तो हम संतोष कर रहे हैं, लेकिन इसलिए छूट जाए क्योंकि समय नहीं था, तो फिर संतोष करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, दिमाग की उलझने खत्म होंगी, दिमाग उसके साथ तालमेल बैठा करके बैठाएगा और उसके दिमाग में बहुत स्पष्टता आएगी। एक बात मैं आपको कह दूं कि अब प्रैक्टिस के आधार पर आप ये मत सोचिएगा कि आपको कुछ फैक्ट्स की जानकारी हो जाएंगी, क्योंकि अब जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्रैक्टिस के माध्यम से आप फैक्ट्स याद नहीं कर सकते, उसमें आपको फायदा नहीं होगा। हम लोगों के समय में इसका फायदा हो जाता था, हालांकि बहुत कम होता था, 5-10% होता था, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां कॉम्पिटिशन इतना टफ हो वहां 5-10% बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो आपको फैक्ट का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो पैटर्न है उसकी जो जटिलताएं हैं उसको समझने में आपको जरूर फायदा हो जाएगा। ये मित्रों ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर आपको बहुत गलियों वाले रास्ते पर आप 3-4 बार चले जाएंगे, तो फिर जब आप चौथी बार जाएंगे तो आप उतना भटकेंगे नहीं, आपको जहां पहुंचना है आप फट से पहुंच जाएंगे। अदरवाइज अगर पहली बार ही आप उसमें चल रहे हैं तो आप भटकेंगे। अब क्यों नहीं भटकेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में रास्ता बिल्कुल साफ है। तो प्रैक्टिस करने से ये बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। मित्रों अब मैं आता हूं थोड़ी सी इस बात पर कि ये तो मैंने 3.5 महीने की आपसे चर्चा की है कि जब 1 महीना बचेगा तब आप कैसे अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब मित्रों 1 महीना बच गया तो अब आप ऑप्शनल को बिल्कुल बंद कर सकते हैं। यू शुड इट, मतलब आपको बंद कर ही देना चाहिए। अब आप पूरी तरह से फोकस्ड होइए अपने प्री की प्रिपरेशन पर, और ये जो 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा बचा है ऑप्शनल वाला, इसमें अब आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर से मैं दोहराऊंगा कि आप फैक्ट के लिए प्रैक्टिस मत कीजिए, उस फॉर्मेट के साथ अपना तालमेल बैठाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन याद रखिए कि प्रैक्टिस करते समय आपके पास जो क्वेश्चंस हों वो इसी तरीके के होने चाहिए जो जटिलता से भरे हुए हों। अगर आप बहुत सिंपल क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे जो सिविल सर्विस के पैटर्न से मैच नहीं करते हैं, तो फिर प्रैक्टिस करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए क्वेश्चंस की जो भी आप क्वेश्चन बैंक की किताब खरीदें या जहां से भी आपको क्वेश्चंस अवेलेबल हो, इस बारे में बहुत ध्यान रखें कि उसका जो पैटर्न है वो सिविल सर्विस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न से मैच करता हो। अदरवाइज फिर वेस्टेज ऑफ टाइम के सिवाय कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपके दिमाग ने तालमेल बैठा लिया है, लेकिन वहां पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, अंततः नुकसान आपको होगा। अब मित्रों जब 1 महीना बचा है तो आप बेसिक्स को अब आप उस तरीके से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए कि समझने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप उस पर सरसरी निगाह मारना शुरू कीजिए कि जैसे आप पन्ना पलट लिया आपने, हाँ इस 1 मिनट के लिए सोचा कि अच्छा इस पूरे पेज पर क्या क्या है, इसके बाद आगे निकल गए। जैसे आप राज्यसभा में पहुंचे, अच्छा तो राज्यसभा किन किन मायनों में लोकसभा से कम है, किन किन मायनों में वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, यहां तक कि लोकसभा को भी ये अधिकार नहीं है। फटाफट मनी मन दोहराया और इसके बाद फिर पन्ना पलटा और फिर आगे निकल गए। यानी कि जो सरसरी निगाह से तैयारी करने की जो बात कही जाती है वो आपको बेसिक्स पर अपनाना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आप फटाफट कितनी चीजें दोहराते चले जा रहे हैं और दिमाग एक तरह से कह लीजिए कि आपने झाड़ा लगा दिया, एक कपड़ा लेकर के और झाड़ दिया तो उससे धूल उसकी झड़ गई। हिस्ट्री में आप कर सकते हैं, ज्योग्राफी में आप कर सकते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में थोड़ा सा आप सरसरी निगाह डालते समय ज्यादा समय दे सकते हैं क्योंकि वहां फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो वहां आपको इस तरह का अभ्यास करना चाहिए, इस तरह की तैयारी का आपको स्वरूप देना चाहिए। तो ये मित्रों ये 1 महीने पहले की बात है और इसके बाद फिर आप परीक्षा देकर आएंगे। मित्रों अब आखिरी में मैं कुछ आपको सलाह देना चाहूंगा और ये सलाह ये है कि अब आप तैयारी के इस स्टेज पर हैं, आप लोग आप फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी के अभी पर्टिकुलर 3.5 महीने पहले के स्टेज पर हैं, अभी 3.5 महीने बाकी हैं और 3.5 महीने बहुत होते हैं मित्रों, 3.5 महीने कम नहीं होते, 100 दिन की वक्त कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि अरे बाप रे तैयारी नहीं हुई, अभी भी आपके पास वक्त है अगर इसका आप सही इस्तेमाल कर लेंगे तो। और जब आपके 1 महीने बच जाएं, 15 दिन बच जाएं, तब कुछ कुछ चीजों का मूल्यांकन कीजिए मित्रों, परीक्षा में बैठ ही मत जाइए। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी अभी एज है और आपके अटेम्प्ट लिमिटेड हैं तो प्लीज डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट, अपने अटेम्प्ट को वेस्ट मत करें यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो। मतलब आपको लगना चाहिए कि मेरी तैयारी अच्छी है, तब आप बैठ जाइए, है नहीं है उसका मूल्यांकन करके रिजल्ट यूपीएससी देगी, आप मूल्यांकन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो नहीं बैठना चाहिए, क्या फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब इससे अनुभव मिलेगा, मैं समझ नहीं पाता हूं मित्रों, सच पूछिए कि अगर मेरी तैयारी ही नहीं है तो मुझे अनुभव कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरी तैयारी कैसी थी और मैं कैसा पेपर करके आया, इसके अनुभव के लिए मुझे एक तैयारी का लेवल तो चाहिए, एक कसौटी तो होनी चाहिए। तो कसौटी तो मेरी अपनी तैयारी हो सकती है, तो अगर मेरी अपनी तैयारी नहीं है तो फिर वो अनुभव बहुत ज्यादा काम भी नहीं आता है। अब आप पूछ सकते हैं सर कि तैयारी से आपका मतलब क्या है, हम कैसे जाने कि हमारी तैयारी है कि नहीं है। देखिए सबसे आसान तरीका तो अनसॉल्व्ड पेपर होता है, पिछले साल का उठा लीजिए, उसे पिछले साल के उठा लीजिए और देखिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये तो एक पूरी तरह से उसका मूल्यांकन हो जाएगा। दूसरा होता है कि कुछ आप पॉइंट्स में आपको बता देता हूं, आपको देखिए कि आपको सब्जेक्ट के बेसिक्स मालूम है कि नहीं है, अगर मालूम है तो आपकी तैयारी अच्छी है, वहां फिर आप जाइए, फिर वहां देखा जाएगा। करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ है कि नहीं, और जब मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं तो पिछले 1.25 साल की बात कर लीजिए, आप 1 से 1.25 साल के बीच में, ये करंट अफेयर्स इसी का मतलब होता है, 1 से 1.25 साल के करंट अफेयर्स के साथ आप यात्रा कर रहे हैं कि नहीं, अपनी तैयारी की यात्रा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर मित्रों अंतिम पॉइंट ये भी है कि आप मेंस की तैयारी की स्थिति में है कि नहीं, मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप मेंस में अच्छा करके आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, अच्छा करने का भी फिर वही है कि आपकी अपनी तैयारी के अनुसार अच्छा करेंगे। अगर आपकी मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं है और आपको सब्जेक्ट की बिल्कुल शुरुआत ही करनी है तो फिर आप कहीं न कहीं दोस्तों आपसे चूक हो जाएगी। और करेंट अफेयर्स पर तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए, क्योंकि मेंस में जो 3 जनरल स्टडीज के पेपर हैं वो सबके सब करेंट पर ही बेस्ड हो, सबके सब तो नहीं कहना चाहिए लेकिन उसमें ज्यादातर कंटेंट करंट अफेयर्स का ही होता है, अगर हम जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर को छोड़ दें तो। तो मित्रों ये मैंने कुछ बातें आपसे प्री एग्जाम के तैयारी को लेकर के की है, क्योंकि इस बीच में मुझे काफी इस तरह के मेल आ रहे थे जिसमें कह रहे थे कि सर प्री की हम तैयारी कैसे करें, परीक्षा नजदीक आ रही है कुछ बताएं, तो मुझे लगा कि इस बार के सैटरडे को इसी सब्जेक्ट पर समर्पित करना चाहिए। तो मित्रों आपके आप लोगों के उस आदेश का पालन करते हुए मैंने ये तैयारी की है और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो ऑडियो है आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो आपकी मदद करेगा ही। और मैं चाहूंगा कि इस ऑडियो को सुनने के बाद आप फिर से अपना फीडबैक भेजें, पिछली बार के ऑडियो पर आप लोगों ने खूब फीडबैक भेजे, हर तरीके के फीडबैक आए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन फीडबैक से सच में मैं कितना लाभ उठाता हूं। तो मुझे विश्वास है कि हर स्पेशल ऑडियो जिसे सैटरडे ऑडियो हम कह रहे हैं उस पर भी आपके फीडबैक मिलेंगे, ताकि आने वाले जो चीजें होंगी जो बातें होंगी मैं आप लोगों के हित के अनुसार बातें कर सकूं। देखिए ये जो स्पेशल ऑडियो है या डेली ऑडियो है या सैटरडे ऑडियो है ये मित्रों आप लोगों के लिए ही है, ये आप लोगों को ही समर्पित है। अगर आप लोगों की ये काम नहीं आ रहा है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए मुझे आप लोगों के फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी। मैं आप सबके सुंदर दिन की कामना करता हूं, सैटरडे भी सुंदर हो और निश्चित रूप से संडे तो सुंदर हो ही। तो मित्रों अब इजाजत चाहूंगा, 34 मिनट हो चुके हैं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।